मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 अगस्त 2015 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में हमेशा की तरह ही मैं आज डॉक्टर विजय अग्रवाल फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2 दिनों के बाद आज हम सब मिले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में अब आने वाले 5 दिनों के लिए, कम से कम 5 दिनों के लिए, एक जबरदस्त ऊर्जा होगी और जबरदस्त उत्साह भी होगा। और इसी क्रम में स्वागत के मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराई हैं। ये नौजवान साथी हैं मनीष राहगडले पवार, आप बालाघाट से हैं, पंकज चंदौलिया, आप जयपुर से हैं, और राजश्री सैनी, आप श्री गंगानगर से हैं। तो मनीष, पंकज और राजश्री, आप तीनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगस्त का महीना आ गया है और आपके दिमाग में डेफिनेटली अगस्त के अंतिम रविवार की तारीख कौंध रही होगी, लगभग अंतिम रविवार से थोड़ा पहले आप कह लीजिए तारीख कौंध रही होगी, क्योंकि उसमें आप सबको प्री एग्जाम देने हैं। तो चूंकि महीने की शुरुआत ये हुई है, मेरे ऑडियो जब से मैंने शुरू किया है तो ये अगस्त का पहला दिन है, मैं कहना चाहूंगा, तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी कि वह आपको शक्ति दे, आत्मविश्वास दे, ताकि आप सब अपनी अपनी क्षमताओं से अधिक अपने प्री एग्जाम में करके आ सकें। मित्रों, एक छोटी सी सूचना ये है कि कल स्पेशल ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था और आज वो सभी फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के मेल पर भेज दिया गया है। तो प्लीज फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट हैं वो अपने अपने मेल देख लें। जो स्पेशल ऑडियो का जो सब्जेक्ट है वो एनजीओ के ऊपर है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन भी कहते हैं, उसके ऊपर ये ऑडियो है। मित्रों, एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा कि मेरे पास कई दिनों से बहुत से मेल आ रहे हैं जिसमें वे स्पेशल ऑडियो की मांग करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा पूरे क्षमा के साथ और पूरी विनम्रता के साथ ही, क्षमा प्रार्थी होने के साथ ही, कि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है फ्रेंड्स, ये 15 दिन की जो क्लासेस होती हैं उसी का पार्ट होता है। उनको यहां जो कुछ भी बताया जाता है उसी का वो एक्सटेंशन होता है, उन्हीं के लिए वो स्पेशली तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी स्पेशल ऑडियो लेक्चर रखा गया है। तो मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि वो लेक्चर हम दूसरे स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी कोई कीमत इस तरीके से भी नहीं रखी गई है कि कोई कीमत के भुगतान करने के बाद उन्हें यह ऑडियो प्रोवाइड किया जा सकेगा। मित्रों, बहुत सीधी सी बात है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि हम जिस काम को भी करें एक संपूर्णता के तहत करें, और उस सिद्धांत के अंतर्गत ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उन्हीं की समझ में उस तरीके से आ सकता है जो हम लोगों का विश्वास है जो क्लासेस अटेंड कर चुके होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बात भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन चूंकि उसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, वो जो कुछ भी यहां बताया गया है उसका एक तरह से एक्सटेंशन होता है, इसीलिए हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उन्हीं के लिए सबसे अधिक यह उपयोगी हो सकता है। तो इसके लिए मैं एकेडमी की ओर से क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों की जरूरत होते हुए भी जो एक जेन्यून रिक्वायरमेंट है मैं आप लोगों के इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के मोटिवेशन वाले पार्ट पर। दोस्तों, सुबह जब मैं उठा तो मेरे स्टडी टेबल पर मेल्स की इतनी मोटी घटी रखी हुई थी, सच पूछिए तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं कहा क्या हो गया, लगभग 45 पेजेस के मेल मेरे टेबल पर रखे हुए थे। आप समझ लीजिए कि एक मेल पर लगभग औसतन 5 लेटर्स ईमेल तो होते ही होंगे। सच में मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि देखें जरा मेल में क्या है, तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ज्यादा जो मेल थे वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, आप सब ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, जो आभार व्यक्त किया था, जो प्रणाम निवेदित किया था, उनसे जुड़े हुए मेल थे। मित्रों, उन सभी के नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपके अंदर का जो ये आभार भाव है ये लगातार विकसित होता रहे, जैसे अंतरिक्ष लगातार फैलता चला जा रहा है, आपके अंदर का भी आभार का भाव लगातार फैलता चला जाए और वह गुरु से होता हुआ, माता पिता के प्रति तो है ही, गुरु से होता हुआ धरती आकाश और जीव मात्र तक के प्रति चला जाए। मित्रों, ये जो आभार का जो जीवन होता है ये बहुत अद्भुत जीवन होता है। इसका संबंध केवल संस्कृति से नहीं है, और वैसे तो भी आप देखें तो भारतीय संस्कृति बहुत अद्भुत तरीके से ग्रेटिट्यूड की लाइफ को जीने में विश्वास रखती है। जो भावारी जो संस्कृति है उसमें साफ साफ यहां तक कि धरती के प्रति भी बहुत गहरा आभार व्यक्त किया गया है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं धरती मां को प्रणाम करते हैं। आप पूरे के पूरे हमारे वैदिक श्लोकों को देखिए, उन वैदिक श्लोकों में प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, कभी सूर्य के प्रति नमस्कार का भाव है, पृथ्वी के प्रति है, वनस्पतियों के प्रति है, नदियों के प्रति है, यानी कि जो भी हमें जीवन दे रहा है, जो भी हमें सस्टेन कर रहा है, पाल पोस रहा है, उसके प्रति हमने आभार का भाव व्यक्त किया है। मित्रों, ऐसा क्या है? धरती सुनती नहीं है, सूरज भी सुनता नहीं है, तो हम क्यों ये व्यक्त कर रहे हैं? आप लोगों ने अपना आभार भाव व्यक्त किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच पूछे तो मुझे बहुतों के नाम भी याद नहीं रहेंगे, आप भी जानते हैं कि सर को नाम याद नहीं रहेंगे, फिर भी आप क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? मित्रों, हमारा जो जीवन है वो केवल शरीर का जीवन नहीं है, हमारा जो जीवन है केवल तर्क का जीवन नहीं है, हमारा जो जीवन है वो केवल मस्तिष्क का जीवन नहीं है, कैलकुलेशन का जीवन नहीं है, हमारा जो सही जीवन है शुरुआत तो यहां से होती शरीर और तर्क से, लेकिन वो फैलते फैलते भाव के स्तर पर पहुंचता है और अंत में फैलकर यही भाव एक स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते पहुंचते ऐसे सूक्ष्म कण में तब्दील हो जाता है, सच पूछे तो जिस सूक्ष्म कण का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जिसे मैं क्वांटम फिजिक्स कहता हूं। दोस्तों, आभार जब हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं तो सही मायने में ये हम अपने ही जीवन का एक नया अंदाज अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने जीवन को एक नए सांचे में ढालते हैं और वह सांचा होता है अपने आप को लगातार हल्का करते चले जाने का सांचा। कैसे हम हल्के होते हैं? बहुत सिंपल सा है दोस्तों, एक गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति या जिसने भी आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निस्वार्थ भाव से मदद की है उसकी आप कीमत नहीं दे सकते। आप बाजार में जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, उसकी आप कीमत देते हैं तो वो एक एक्सचेंज है और सोसाइटी में इसकी भी जरूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी आप कोई कीमत नहीं देते हैं लेकिन उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो सवाल यह है कि अब आप इसकी कीमत अदा कैसे करेंगे, या यूं कह लीजिए कि आप उऋण कैसे होंगे। निश्चित रूप से जब कोई हम पर कोई एहसान करता, एहसान कर लीजिए या कोई हमें मदद करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता का बोध होता है, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम कहीं भारी हो गए हैं, हमें भी ईश्वर ऐसा मौका दे, ऐसा समय आए जब हम इस कर्ज को उतार सकें। भारतीय संस्कृति इस बात को लेकर चलती है। तो मित्रों, हम कैसे उतारेंगे? केवल आभार व्यक्त करके। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, अल्लाह ने जन्म दिया है, हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा और इतनी बड़ी प्रकृति हमारे लिए रची है, उसकी कीमत हम कैसे चुका सकते हैं? तो सच पूछे तो ये जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, ये केवल ईश्वर के प्रति व्यक्त किया गया आभार है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ उनसे मांग रहे हैं। दिस इज नॉट द लिस्ट ऑफ डिमांड्स, दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। ये तो हम अब उनके प्रति एक आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, जो आभार वाला हृदय होता है, आभार वाली जो चेतना होती है, याद रखिए उसकी जो आकर्षण करने की जो शक्ति होती है, जो ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो अद्भुत होती चली जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे अंदर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की कितनी जबरदस्त पावर है, और केवल एक्सेप्ट करने की ही नहीं बल्कि एक्सेप्ट करने के बाद लगातार उसे इनलार्ज करते चले जाने की, उसे फैलाते चले जाने की। आप एक पंक्ति पढ़ते हैं या याद कर लेते हैं, उसी पंक्ति के इर्द गिर्द आपका दिमाग रुक जाता है। इसका मतलब है कि एक्सेप्ट तो उसे आपने किया, लेकिन उसे अब आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसे विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीजन मनोविज्ञान में होता है। और सच पूछिए तो आभार व्यक्त करने से वह गांठ जो इसके एक्सटेंशन को रोक रही है, इसके विस्तार को रोक रही है, वह गांठ खुल जाती है। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके पास, आप सब, आपके सबके पॉकेट में रुमाल होगा। रुमाल के एक कोने को पकड़कर लहराइए तो देखिए कि चलती हुई हवा के साथ वो कैसे फरफराता है, लहराता है। तो अब उस रुमाल के बीच में एक गांठ लगा दीजिए और अब उसके उसी तरह से कोने को पकड़ करके अब लहराइए। अब क्या होगा? अब उसने लहराना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें गांठ लग गई है। तो क्या एक गांठ लगने से रुमाल का कोई वजन बढ़ गया है? तार्किक रूप से सोचिए, रुमाल में कोई वजन नहीं बढ़ा है। रुमाल का वजन ज्यों का त्यों है, क्योंकि गांठ तो रुमाल के अंदर ही थी, आपने उसे केवल प्रकट किया है, बाहर से कुछ ला करके रुमाल में वजन नहीं डाला है। तो अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो रुमाल का वजन तो वही है, तो जो हवा पहले रुमाल को इतना ज्यादा लहरा रही थी वही हवा रुमाल को अब भी लहरा सकती है, क्योंकि रुमाल का वजन ज्यों का त्यों है। लेकिन हुआ क्या है कि उस गांठ ने उस पर्टिकुलर स्पेस पर रुमाल के वजन के दबाव को बढ़ा दिया है। तो नो डाउट कि रुमाल का कुल वजन नहीं बढ़ा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस पर उसका वजन बढ़ गया है, और यह बढ़ा हुआ वजन ही अब रुमाल के लहराने की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। मित्रों, इसे ही मैं कहता हूं हल्का होना। जब कोई हमारे लिए करता है तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, कर दिया, क्या कर दिया उसने, उसकी इच्छा थी, उसने किया, उसने अपने लिए किया, मैंने तो नहीं किया, कहा था कि वो मेरे लिए करे। तो इस तरह के ढेर सारे तर्क हमारे दिमाग में आते हैं और इस तरह के तर्कों से हम अपने आप को संतुष्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या करेंगे जो रुमाल में गांठ पड़ गई है? ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो रुमाल में गांठ को आप खोलें, इसके लिए मन के रुमाल की गांठ खोलें या गांठ पड़ने ही न पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते रहें। और आभार व्यक्त करने का दूसरा सबसे बड़ा जो आधार होता है, जो तरीका होता है, वो ये कि यदि हमारे लिए किसी ने किया है तो हम भी किसी दूसरे के लिए करें, तब तो वो आभार और भी अधिक मूल्यवान हो उठता है मित्रों। और इस तरीके से लगातार हम अपने आप को हल्का करते चले जाते हैं, हल्का करते चले जाते हैं। मित्रों, ये प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु जितनी हल्की होगी वह वस्तु धरती से उतनी अधिक ऊपर उठती चली जाएगी। तो आप अपने आप को इतना हल्का कीजिए कि लोग आपको अपने कंधों पर उठाकर आपका कद बढ़ा सकें, और अपने को इतना हल्का कीजिए कि अंततः हल्के हल्के होते होते आप आसमान तक ऊपर चले जाएं। और आभार उसका एक तरीका है। मित्रों, कोई देता नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं ये तो अपने मन के सुख के लिए कर रहा हूं। आप ले रहे हैं और आप ले रहे हैं उसी के तहत आप गुरु का भाव मेरे प्रति रख रहे हैं। इस भाव के लिए मैं निश्चित रूप से आप सबकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि एक उदात्त भाव है। ये भाव मैं भी रखता हूं, मैं किसी और के प्रति रखता हूं। लगातार ये भाव कड़ियों से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि इस भाव का सबसे बड़ा प्रतिदान यही है कि हम इस भाव का विस्तार करते चले जाएं, ताकि एक अच्छा समाज बन सके। एक अच्छे इंसान से शुरुआत होगी, हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छा समाज बन सके, और अंततः एक अच्छा राष्ट्र और एक अच्छी दुनिया बन सके। और निश्चित रूप से जीवन की उपलब्धियां तो इससे मिलती ही मिलती हैं। और मित्रों, अंत में ये वाक्य कह के मैं इस मोटिवेशन वाले पार्ट को यहीं विराम दूंगा कि याद रखिए कि जो आपको वही मिलता है जो आप लेते हैं, दूसरा कोई देता नहीं है। और यही आपकी क्षमता है, जो लेने की क्षमता है यही आप हैं। इस पर विचार कीजिएगा। आपको वही मिलता है जो आप लेते हैं, याद रखिए, आपको वही नहीं मिलता है जो आपको दिया जाता है। इस भ्रम में आप मत रहिएगा। आपको वही मिलता है जो आप लेते हैं, और जो आप लेते हैं वही आपकी क्षमता है और वही आप हैं। मित्रों तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर। हालांकि थोड़े से हम कुछ दिनों के बाद इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि बीच में दो दिन का गैप आ गया, लेकिन अच्छी बातें तो कभी भी की जा सकती हैं और बुरी बातें बेहतर हो कि हम तुरंत भी ना करें। फ्रेंड्स अब मैं सेकेंड स्टेज पर आता हूं और ये सेकेंड स्टेज KIR न्यूज का स्टेज है। फ्रेंड्स आपने न्यूज में कुछ खबरें सुनी हैं और खबरों में आपने देखा है कि एकदम नई खबर कोई भी नहीं है। जो बात मैंने आप लोगों को बार बार कही है कि AIR न्यूज में आपको 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में कम से कम डेली समझ लीजिए कि तीन चार हेडलाइन तो ऑलमोस्ट ऐसी मिली जाती हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जिस पर हमें बातें करनी चाहिए। लेकिन आप इसे इस रूप में कैलकुलेट मत करिएगा कि रोज तीन चार खबरें, इसका मतलब है साल में 1500 खबरें। नॉट एट ऑल, है ना। बहुत सी खबरें, ज्यादातर खबरें पिछले खबरों के एक्सटेंशन होती हैं और सही मायने में यही रेडियो का सबसे बड़ा रोल भी है क्योंकि वो लगातार आपको एक जो न्यूज आइटम है उसके इतिहास से परिचित कराता चला जाता है। कब वो शुरू हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और अंत में वो घटना किस रूप में खत्म हुई। इसका मतलब है कि जो रेडियो न्यूज है वह आप एक प्रकार से न्यूज नहीं सुन रहे हैं, इतिहास बनते हुए इतिहास को सुन रहे हैं। इतिहास जो बन रहा है आप उसे सुन रहे हैं और कल्पना करके देखिए कि एक घटना, एक इवेंट जो आपके कानों से होकर के शुरू से लेकर के अंत तक गुजर रही है इतिहास के फॉर्मेट में, उस पर आपकी कितनी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए। और याद रखिए कि ये जो आपकी पकड़ होगी इसका मुकाबला वो स्टूडेंट नहीं कर सकता जो किताब में इसी इवेंट को रट कर अपना उत्तर लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। तो मित्रों कल जो भी AIR में न्यूज थी, देखिए कि चार न्यूज में आपको बताता हूं, चार पांच खबरें जो थी वो किस तरह से पूरी खबरें पिछले ही खबरों का एक्सटेंशन है। इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि एक भी खबर नई नहीं थी। एक संसद में लगातार गतिरोध चल रहा है, पहली खबर ये थी। तो जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है आप डेली सुन रहे हैं कि ये गतिरोध चल रहा है, संसद में क्या हो रहा है, संसद स्थगित हो रही है, फलाना हो रहा है, कामकाज नहीं हो रहे हैं, डेली की खबर है, राइट। अब हम देखेंगे बाद में करके हम देखेंगे कि इसमें से हमारे लिए क्या निकलता है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में भी आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी और बड़े दो विचित्र सी स्थितियां भारत और पाकिस्तान में मिलती रहेंगी। वही कि आज वहां सीमा क्षेत्र में वो सीज फायर का उल्लंघन हुआ और वहां ये आतंकवादी गतिविधियां हुई और भारत ने उसके प्रति विरोध जताया और फलानी पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान ने उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया, ये सारी खबरें चलती रहती हैं। आप देखेंगे कि इसमें नाम बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएंगे, छोटी सी घटनाएं बदल जाएंगी, लेकिन उनका जो मूल चरित्र है घटनाओं का लगभग लगभग वही रहेगा। ये मैं आपको घटनाओं को देखने का एक तरीका बता रहा हूं, है ना, क्योंकि हम घटनाओं को कितना याद रखेंगे और घटनाओं को याद रखने से होगा भी का क्या, क्योंकि 200 शब्दों के जो आपको उत्तर लिखने होंगे या कह लीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड में के सामने बैठकर दो मिनट में किसी पूछे गए प्रश्न का जवाब देना होगा, तो हम उसमें पूरे की पूरी घटनाओं की संख्या नहीं गिनाएंगे कि ये घटनाएं हुई। हमको घटनाओं के मूल चरित्र को समझना है। तो भारत और पाकिस्तान के बारे में जितनी भी खबरें आप सुनते हैं आप देखेंगे कि उसका जो चरित्र होता है वो लगभग लगभग वही होता है। एम आई रॉन्ग, सोचिएगा इस पर। तीसरी जो खबर थी फ्रेंड्स वो GST को लेकर की थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के थी। आपको मालूम है चौथी खबर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के थी। आपको मालूम है कि ये दो बिल अभी संसद में अटके हुए हैं, राइट। तो ये बहुत लंबे समय से जो चीजें चली आ रही हैं उन्हीं का एक वर्तमान स्टेटस क्या है ये कल के न्यूज ने हमारे सामने रखा है, राइट फ्रेंड्स। अब हम इसमें से अपने सिविल सर्विस की तैयारी का मामला देखते हैं कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और किस तरीके से उपयोगी हैं। हम थोड़ी सी चर्चा अब इसके ऊपर भी करेंगे। मित्रों संसद, पार्लियामेंट, चलिए हम गतिरोध को हटाते हैं, राइट, हम पार्लियामेंट को लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं 1979 से बात कर रहा हूं, जब से ये नया पैटर्न शुरू हुआ है प्री मेंस और इंटरव्यू का, तब से आप पेपर उठा करके देखिए, एक भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस पेपर में पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो, मतलब पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेक्स द पार्लियामेंट, है ना, दोनों एक जैसे एक है, कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि उस पर प्रश्न नहीं पूछा, ना पूछा गया हो, और एक नहीं बल्कि दो दो प्रश्न, ऑलमोस्ट औसतन दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि हम थोड़े से पार्लियामेंट को और एक्सटेंड कर दे और बढ़ा दे तो आपको लगेगा कि तीन से चार क्वेश्चन पार्लियामेंट पे मिल जाएंगे आपको। तो पार्लियामेंट मानकर चलिए कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक बहुत अहम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल यह उठता है कि पार्लियामेंट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये नया पैटर्न आया 79 के बाद के पैटर्न को मैं नया पैटर्न कर रहा हूं, अब जो पिछले दो साल से है ना पहला एग्जाम, उस एग्जाम अभी का जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न में कहूं, जो मेंस को चेंज किया है, जिसमें एक ऑप्शनल हटा करके और उसकी जगह जनरल स्टडीज के दो की जगह चार पेपर कर दिए, मैं उस पैटर्न की बात कर रहा हूं। 2013 में पहला एग्जाम हुआ, 2014 में दूसरा एग्जाम हुआ, जिसके रिजल्ट अभी आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब इस तरीके के सब्जेक्ट पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका कोई न कोई संबंध करंट अफेयर से है। मतलब अब पार्लियामेंट पर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, या वित्त बजट कैसे पारित होता है, या पार्लियामेंट के क्या अधिकार हैं, लोकसभा इंपॉर्टेंट है या राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या फर्क है, भारत का जो संविधान है एकात्मक है या संघात्मक है, ये उस जमाने में पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इसकी सबसे खूबसूरती है, सिविल सर्विस की सबसे खूबसूरती है कि किताब है लेकिन किताब नहीं है, बियॉन्ड द बुक, कोर्स से बाहर नहीं है, कोर्स से है लेकिन बियॉन्ड द बुक्स। देखिए दोनों में फर्क है, कोर्स का मतलब है कि वो सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन दैट इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक। क्या खूबसूरती है सिविल सर्विस की, यही खूबसूरती है फ्रेंड, और इसी के लायक आपको खुद को बनाना है। जिस दिन आप थोड़ा सा इस लायक अपने आप को बना लेंगे, आपको सिविल सर्विस जो हो सकता है कि अभी डरावना लग रहा हो, बहुत प्यारा लगने लगेगा, और सच में है भी, ये बहुत प्यारा एग्जाम है दोस्तों, इसीलिए मैं इस एग्जाम से इस कदर जुड़ा हुआ, इतनी गहनता से जुड़ा हुआ हूं, मुझे बहुत प्यारा लगता है सिविल सर्विसेज। अब आप देखिए कि अब हम आते हैं, अब हम अभी जो एग्जाम होने जा रहा है 2015 दिसंबर में, अभी अगस्त है, और ये जो घटना है ये कह लीजिए कि लगभग दो सप्ताह से चल रही है, मतलब जुलाई लास्ट से चल रही है, राइट। तो हम ये मान करके चलते हैं कि सितंबर तक की जो घटनाएं होंगी, अगस्त लास्ट तक की कह लीजिए, इसकी संभावना है कि 2015 के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मित्रों, एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे आता है, अगर ये पूछ लिया जाता है संसद के गतिरोध को लेकर, तो क्या वो गलत होगा? अब पार्लियामेंट के चरित्र पे नहीं पूछेंगे, वो संसद में जो गतिरोध हो रहा है उस पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो क्या गलत होगा? अब संसद के गतिरोध पर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये अब आपको देखना है। लेकिन मेन प्रश्न को प्रिडिक्ट कर पाना, सोच पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वो चरित्र क्या होगा प्रश्न का, जो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके मूल, उसका मूल चरित्र यही होगा कि जो संसद में जो गतिरोध हो रहा है, संसद का, संसद एक जगह है जहां बहस होनी चाहिए, जहां पूरा देश बहस कर रहा है, है पूरे देश के प्रतिनिधि जहां बहस कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, राष्ट्रीय विषयों पर वहां बातचीत हो रही है, कानून बदलने के बारे में, कानून के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वहां बातचीत होनी चाहिए। वो किस गतिरोध का स्थान नहीं है, नहीं, चौराहों पर अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होगा? चौराहे ट्रैफिक जैम करने के लिए नहीं है, चौराहे एक ही रास्ते को चार रास्तों में विभाजित करने के लिए है। एक रास्ता जो जा रहा है चौराहे पर पहुंच करके आपको तीन और अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। तो संसद भी वही है, और अगर वहां इस तरह का गतिरोध हो जाए तो क्या होगा? रीजन चाहे देखिए जो भी हो, मैं रीजन की बात नहीं कर रहा हूं कि यहां बीजेपी की गलती है या कांग्रेस की गलती है या कौन जिद कर रहा है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, है ना, वो तो पार्टी पॉलिटिक्स है। हम संसद के करैक्टर पर जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले, दो तीन तीन एक दिन पहले की बात है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था पवन वर्मा जी का, जो अभी राज्यसभा के सदस्य भी है और इंडियन फॉरेन सर्विस के वो ऑफिसर भी रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता भी हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन उसमें लिखी थी उस आर्टिकल में, कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटेन की जो संसद है, जो लोकसभा है ब्रिटेन की कह लीजिए, आज तक वो स्थगित ही नहीं हुई है, अभी तक स्थगित नहीं हुई, कभी स्थगित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बहस तो वहां भी होती है, विरोध वहां भी होते हैं, तो वहां का ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो उसको रोकता नहीं है, वर्किंग को नहीं रोकता है। तो क्या अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है, तो क्या भारतीय संविधान में भी कोई ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए कि अगर आपके इस तरीके के कुछ बहस हैं, कुछ डिबेट्स हैं, तो वो अलग होंगे लेकिन संसद बहस करेगी। संसद का जो कामकाज होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, पूरा डेली का जो है वो निर्धारित होता है, इतने बजे से इतने बजे तक इस विषय पर बहस होगी सारा, और उसको बाधित नहीं होने दिया जाएगा। ये सच पूछे तो कानून में होना चाहिए। जैसे मित्रों, मैं इसी संदर्भ में आपसे एक और छोटी सी बात चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने पढ़ी थी कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है उसमें एक नियम है, नियम यह बनाया हुआ है कि जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहस चल रही है, और यदि कोई विधानसभा के अध्यक्ष की आसंदी के निकट पहुंच गया, जिसको हम वेल हाउस ऑफ वेल कहते हैं, एक क्षेत्र होता है, यदि उसमें कोई एंटर कर गया तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा उस दिन भर के लिए, वो भाग नहीं ले सकेगा फिर। जैसे अभी आपने देखा कि संसद में भी इस तरह की घटना हुई थी, अभी पिछले सप्ताह कांग्रेस के एक सांसद उस क्षेत्र में आ गए थे तो फिर लोकसभा स्पीकर ने उनको दिन भर के लिए बाहर कर दिया। तो एक नियम यह भी बनाया जा सकता है कि जो इस लाइन को, लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वो ऑटोमेटिक फाउल हो जाएगा, जैसे खेलों में होता है ना क्रिकेट में, कि आप बॉल फेंकते समय अगर आपका पैर इस लाइन के बाहर निकल गया, या फुटबॉल खेलते समय अगर आप डी एरिया में बिना बॉल के एंटर करके उस टीम की खिलाड़ी से पहले खड़े हैं तो आप आउट हो जाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस पर आप विचार कीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब संसद चलेगी, संसद अपना कामकाज करेगी क्योंकि वहां पब्लिक का पैसा लग रहा है और 6.5 करोड़ रुपए पर सप्ताह संसद पर खर्च हो रहे हैं, चुनाव करके लोगों ने भेजा है वहां जनता को, आपके इससे मतलब नहीं है कि कौन रिजाइन करे कि नहीं करे, ये छोटे इश्यूज हैं, उसको आप पार्टी पॉलिटिक्स में देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शो मस्ट गो ऑन, संसद में बहस होनी चाहिए क्योंकि बहस करने की जगह है, गतिरोध करने की जगह नहीं है। संसद स्थगित करने के लिए नहीं बने हैं, एडजॉर्नमेंट के लिए नहीं बने हैं, राइट। तो इस तरह के इश्यूज पर आप बात करना शुरू करें, तो सोचना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि संसद के बारे में नई नई चीजें आपको आपके दिमाग में आने लगेंगी, और फिर जब कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप फट से उसका उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो इसको लेकर के मुझे लगा कि थोड़ी सी बात आपके सामने रखनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक वो कैपेसिटी पैदा हो कि इवेंट्स को कैसे लेना है, क्योंकि याद रखें कि इवेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, उस इवेंट्स के पीछे, उस न्यूज के पीछे जो व्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल सर्विस की दृष्टि से। मित्रों, भारत पाकिस्तान की खबर आपने सुनी है, मैंने कहा कि उसका करेक्टर जो रहता है लगभग एक सा ही होता है, और अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग होनी है वो लगभग 23-24 अगस्त को होगी ही, जो उफा में पक्का तय किया गया था, क्योंकि अभी लग रहा था कि खासकर अभी जो गुरदासपुर जिले में जो घटना हुई है उसको देखते हुए हो सकता है कि ये मीटिंग कैंसिल हो जाए, लेकिन भारत पाकिस्तान के प्रति अभी जो नीति लेकर के चल रहा है वो यही है कि ठीक है, इस तरह की घटनाओं को कंडम करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला वो बंद नहीं करेगा। इस तरीके से भारत पाकिस्तान के प्रति नीति को लेकर चल रहा है। जीएसटी और भूमि अधिग्रहण का मामला आप जानते हैं कि लगभग वही है, जीएसटी के बारे में तो वही दिया गया है कि अभी तो ये अगर पास नहीं हो सका तो हम नए बजट सेशन में उसे लागू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसको अभी आधे राज्यों की स्वीकृति मिलनी होगी जीएसटी के। और भूमि अधिग्रहण के बारे में मालूम है कि जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी जो 3 सदस्यों की, वो उसकी डेट अभी बढ़ेगी क्योंकि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट दे सके। मित्रों, अंत में फिर यही कि पब्लिक स्पीक का जो विषय है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर था, तो इसे आप जरूर सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। मित्रों, अखबारों के डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, अखबार आपके नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है, आप सब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और मुझे लगता है कि आप सब में इतनी क्षमता आ गई है कि आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल के ऊपर, बहुत से ईमेल आए हैं, मैंने कहा कि 45 पेज के ईमेल आज मेरे पास थे, उसमें में कुछ नाम मैंने छांटे हैं वो मैं कह रहा हूं, और जिनके नाम मैं नहीं भी ले रहा हूं वो इसे बिल्कुल भी अन्यथा न लें। नाम छांटने के पीछे मेरे ढेर सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसके आप बिल्कुल अन्यथा न लें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसमें नचिकेता वत्स जो गया में FEIS का काम कर रहे हैं, तो नचिकेता आपने लिखा है कि अभिषेक आनंद सिंह ने आपके ग्रुप को 6 अखबार डेली प्रोवाइड करने का काम किया है, तो अभिषेक आनंद सिंह जी को मेरी तरफ से आप बहुत धन्यवाद दे दीजिएगा उनके इस नेक काम के लिए। और भी लोग आपने लिखा है कि सामने आ रहे हैं, और खासकर जब से आपका मोबाइल नंबर आप अनाउंस किया गया है तब से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप AFEIS क्लब के एक मॉडल के रूप में गया के अपने ग्रुप को विकसित कर सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस काम में लगे रहें। डेफिनेटली आप देखेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में ही छिपा रहता है। तो मित्रों अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं, एक और भी नाम है मित्रों, एक बड़ा अच्छा मेल आया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो मेरे सेकेंड बैच के स्टूडेंट तो हैं लेकिन ना तो उन्होंने अपना नाम लिखा है और ना अपने स्थान का नाम, तो उन्हें लिखना चाहिए था। उन्होंने लिखा है कि उनकी दादी भी मेरे इस ऑडियो को सुनती हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है, फिर उस पर वो बात भी करती हैं। तो फ्रेंड आपने चूंकि नाम नहीं लिखा है लेकिन आपकी दादी को मेरा नमस्कार कहिएगा और उनके इस सदा सहायता के प्रति मेरी तरफ से आभार भी व्यक्त कीजिएगा। तो मित्रों अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं, उसमें है अमित दुबे रायपुर से, सुरेंद्र सलोनिया पानीपत से, सुनील कुमार सीकर से, तुषार हैं न्यू दिल्ली से, मयंक कुमार है मुजफ्फरपुर बिहार से, संदीप दरणे हैं नासिक से, अतुल प्रजापति हैं नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से ही है मनमत दीक्षित, अंशु अनुपमा हैं, राम सोनी हैं ग्वालियर से, स्मिता घोरपड़े, चंद्रदीप गांधी, ममता चाहर, तनुप्रिया सिंह न्यू दिल्ली से, अतुल कुमार पांडे बलिया से, कविता सिरोहिया ग्वालियर से, सुदेश गिल कैथल हरियाणा से, अभय मिश्रा गोरखपुर से, खेमराज जोधपुर से, संदीप कुमार लखनऊ से, उदयपाल सिंह सीधी से, मेधा वादुकिया जूनागढ़ गुजरात से, मयंक वर्मा लखनऊ से, आस्था गर्ग फरीदाबाद से, बिमला प्रियंका बागमोड़े सतारा से, गजेंद्र कंसल उज्जैन से, गौरव शर्मा न्यू दिल्ली से, और संगीता कुमारी पटना से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों मेरे पास एक मेल सुरेंद्र सलोनिया ने पानीपत से भेजा है, उन्होंने लिखा है कि एक एड्रेस दिया है कि CEC, सी फॉर कैलकटा, ई फॉर इंग्लैंड और फिर CEC कैलकटा, CEC UGC के वीडियो उसमें डले हुए हैं जिसमें सब्जेक्ट के लेक्चर्स वगैरह हैं जिसकी उन्होंने तारीफ की है। मैंने ये वीडियो अभी नहीं देखे हैं, मैंने सुने नहीं हैं, लेकिन आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों उन्हें देख सकते हैं, और अगर उनको ठीक लगता है तो वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मैं एड्रेस फिर से एक बार बता देता हूं, वो है CEC UGC, ये वीडियो है। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, कल हम लोग फिर बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे, काम की बातें करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।